हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण और शिविका एक साथ बेसमेंट से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ चलकर आए, लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास आए, करण के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी और उसने तुरंत ही शिविका का हाथ एकदम कसकर पकड़कर उसे और आगे जाने से रोक लिया। उसके ऐसा करने पर शिविका ने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा और कन्फ्यूजन से बोली, क्या हुआ करण? हम शिविका इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही करण ने उसके नज़दीक आते हुए उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, बाहर वो लोग हैं, उनमें से कोई तो है। उसकी ये बात सुनकर शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कुछ तो बोलना चाहती थी, लेकिन करण ने उसके मुंह पर से हाथ नहीं हटाया और उसी तरह धीमी आवाज में बोला,
हो सकता है अभी भी काफ्या उनके पास ही हो, मुझे जाकर देखना होगा।
करण की ये बात सुनकर शिविका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और करण के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसने धीरे से उसका हाथ उठाया और बोली, ठीक है, मैं समझ गई थी इस आवाज़ में नहीं बोलना है और तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से, मैं भी साथ चलती हूँ। शिविका की ये बात सुनकर करण काफ़ी इरिटेट होते हुए आइज रोल की और बोला, ओहो, तुम क्यों हमेशा बहस करती हो? अगर दोनों लोग जाएंगे और हम दोनों को उन्होंने साथ में देख लिया तो फिर दोनों पकड़े जाएंगे, ऐसे अगर एक को यहाँ पर रुक गया तो वो दूसरे को बचा सकता है। करण की ये बात सुनते ही शिविका तुरंत बोली, ठीक है, फिर मैं जाकर देखती हूँ और अगर मुझे पकड़ लें तो तुम आना मुझे बचाने, ये ठीक रहेगा ना? इतना बोलकर करण के जवाब का इंतजार किए बिना ही शिविका वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो करण ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर काफी भारी हुई आवाज में कहा,
डू यू स्टिल ट्रस्ट मी दिस मच?
उसकी इस बात पर शिविका ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर हल्के से अपनी पलकें झपकाई और कुछ भी नहीं बोली, अपना हाथ छुड़ाकर वहां से दरवाजे की तरफ चली गई और उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए देखा तो वहां पर कुछ दो या तीन लोग थे और उनमें से किसी के पास भी उसे काव्या नजर नहीं आ रही थी। शिविका को कहीं ना कहीं ऐसी ही कोई उम्मीद थी, उसे लगा ही था कि इन लोगों के पास काव्या नहीं होगी, उन लोगों ने जरूर उसे कहीं और छुपा दिया होगा, फिर से वो लोग उसे इस तरह सामने छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में शिविका ने एक ठंडी सांस छोड़ी और वापस पीछे मुड़कर करण की तरफ ही देखने लगी। उसके इस तरह से देखने का मतलब करण ठीक से समझ नहीं पाया तो वो कन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन तभी शिविका ने हाथ के इशारे से करण को अपनी तरफ बुलाया। करण किसी तरह दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलते हुए वहां दरवाजे के पास आया और उसका सर अभी भी घूम रहा था और दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसे पता है ऐसी सिचुएशन में वो अपने दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। करण शिविका के पास आया और शिविका ने तुरंत ही उसका हाथ थाम लिया क्योंकि वो उसकी हालत देख रही थी। करण के नज़दीक आते ही शिविका ने धीमे से उसके कान में फुसफुस कर कुछ कहा और फिर उंगली से दरवाजे के बाहर की तरफ इशारा करने लगी। करण ने भी झांक कर उस तरफ देखा और फिर कुछ देर के बाद उन दोनों ने एकदम तेज झटके से दरवाजा खोलने की आवाज़ की और खुद तुरंत ही जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गए। इस तरह से तेज दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े लोगों का ध्यान उस तरफ हुआ और वो तुरंत ही करण शिविका को देखने के लिए अंदर की तरफ आ गए। उनमें से एक आदमी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या हुआ रे उधर, देखो वो दरवाजा किसने खोला? उसकी बात सुनते ही सभी लोग एकदम से दरवाजे के अंदर आए और जैसे ही वो सारे लोग अंदर आए उन्होंने इधर उधर देखा और उन्हें करण अपनी जगह पर नजर नहीं आया जहां थोड़ी देर पहले वो लोगों से बेहोश छोड़कर गए थे और उन्हें लगा था कि करण के सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई है तो इतनी जल्दी तो उसे होश नहीं आएगा, इसीलिए ही उन लोगों ने करण को बांधने या वहां से कहीं और किसी कमरे में बंद करने की हिम्मत नहीं की थी, इसीलिए वो सारे लोग भागते हुए उस तरफ आए और वो जगह दरवाजे से काफी अंदर थी। तो जैसे ही शिविका करण ने उन तीन चार आदमियों को बेसमेंट में अंदर की तरफ जाते हुए देखा, वो दोनों जो कि दरवाजे के पीछे छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे थे और उन दोनों ने ही ये प्लान किया था, तुरंत ही दरवाजे से बाहर निकालकर बेस और शिविका ने तुरंत ही वो दरवाजा बाहर की तरफ से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर फिर उन लोगों ने पीछे पलट कर देखा लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था तो उन लोगों ने कहा, ये किसने बंद किया? क्या वो लोग हमें चकमा देकर भाग गए? सब तुम लोगों की ही बेवकूफी की वजह से होता है, बोलो अब दरवाजा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उनके बॉस ने उन सब पर चिल्लाते हुए कहा। अपने बॉस की बात सुनते ही वो तीनों चारों लोग अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था तो इतनी आसानी से नहीं खुला। करण शिविका जब तक इस रास्ते से बाहर आ गए जहां से वो लोग वहां तक पहुंचे थे और बाहर ही कुछ दूर पर उनकी कार खड़ी हुई थी। करण तो ड्राइव करने की हालत में नहीं था इसलिए शिविका ने उसे पैसेंजर सीट पर बिठाया और झुककर उसकी सीट बेल्ट पहनाने लगी। ऐसा करते हुए शिविका का चेहरा करण के चेहरे के एकदम सामने था और वो झुकी हुई थी तो उसके सारे बाल भी चेहरे के सामने आ गए थे। करण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उसके बालों को किनारे किया, लेकिन तभी उसने वापस से उस बंगले की तरफ देखा जिसके बेसमेंट से अभी वो दोनों निकल कर आए थे, तो उसे तुरंत ही कुछ याद आया। करण ने तुरंत अपना हाथ पीछे किया और एकदम सीरियस हो गया। शिविका उसकी सीट बेल्ट बंद कर ही रही थी कि तभी करण ने कहा, रहने दो ये सब बेकार के काम, छोड़ो और जल्दी से ड्राइव करो, हमें यहां से निकलना होगा, वो लोग किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हो तुम, इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हारे सर पर, ऐसे में सीट बेल्ट तो लगाना इम्पोर्टेंट है और तुम्हें ये बेकार का काम लगता है। इतना बोलते हुए सीट बेल्ट शिविका ने लॉक कर दी और सीधे होकर उसकी तरफ देखने लगी। करण ने कुछ नहीं कहा और बस एक गहरी सांस ली। शिविका भी तुरंत ही जल्दी करके अपनी सीट पर आकर बैठी। उसने फटाफट से अपनी सीट बेल्ट भी लगाई और ड्राइव करने लगी। उसे पता तो नहीं था कि यहां से कहां जाना है, लेकिन फिर भी उसने तुरंत अस्पताल की तरफ ड्राइव किया क्योंकि अभी उसके लिए सबसे पहले करण का ट्रीटमेंट होना जरूरी था और फिर वहां से ही उसने किसी को कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचा। मुझे किसी को कॉन्टैक्ट करना है, अपनी आंख बंद करके सीट पर बैठे हुए करण ने सिर्फ इतना बोला। शिविका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, वहां पर लैंडलाइन फोन तो मिल ही जाएगा। अपने दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए करण ने कहा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, प्लीज घर चलो और पहले अपना फोन लो, रुद्र के घर या फिर मेरे घर, शिवानी ने करण को डांटते हुए इतना कहा। चुप करो तुम, इतनी चोट लगी है, हॉस्पिटल से पहले हम कहीं भी नहीं जाएंगे और वहां से कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसकी ये बात सुनकर करण कुछ तो बोला जा रहा था लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के नीचे फिर से अंधेरा छा रहा है। उसकी आंखें बंद हो गईं और सीट का टेक लगाए हुए वो कब बेहोश हो गया उसे पता नहीं चला। टू बी कंटिन्यूड।